हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा श्री चैतन्य चरतामृत आदि लीला अध्याय 9 श्लोक संख्या 41 श्वेत पट पे। भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक कोरी करो पर उपकार। भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जा। भारत भारत को भारत की भूमि ते भूमि में हैला हुआ है मनुष्य मनुष्य जन्म जन्म जार जिसका जन्म ऐसा जन्म सार्थक सफल कोरी ऐसा करके करो करो पर दूसरों पर उपकार उपकार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहरा सकते हैं आप। जिसने भारत भूमि में मनुष्य जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु की उदारता इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में व्यक्त हुई है। यद्यपि वे बंगाल में जन्मे थे और बंगालियों का उनके प्रति विशेष कर्तव्य है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु केवल बंगालियों को ही नहीं अपितु भारत के सारे निवासियों को संबोधित कर रहे हैं। भारत भूमि में ही वास्तविक मानव सभ्यता विकसित होती है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, मानव जीवन विशेष रूप से भगवत साक्षात्कार के लिए है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जो भी भारत भूमि भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे यह विशेष अवसर प्राप्त है कि वह वैदिक सभ्यता के उपदेश तथा मार्गदर्शन का लाभ उठा सके। वह स्वतः आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांतों को पा लेता है, क्योंकि 99.9% भारतीय लोग, यहाँ तक कि गांव के सीधे साधे किसान तथा अशिक्षित लोग भी आत्मा के देहांतरण विगत तथा भावी जीवन एवं ईश्वर में विश्वास करते हैं और स्वाभाविक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि की पूजा करना चाहते हैं। ये विचार भारत में जन्म लेने वालों को स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकार में मिलते हैं। भारत में अनेक पवित्र तीर्थ स्थान है, जैसे गया, बनारस, मथुरा, प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी, और वहां आज भी लोग लाखों की संख्या में जाते हैं। यद्यपि भारत के वर्तमान नेता सामान्य जनता को ईश्वर अगले जन्म तथा पुण्य और पाप में जीवन के भेद में विश्वास न करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यद्यपि उन्हें शराब पीने, मांस खाने तथाकथित रूप में से सभ्य बनने की शिक्षा देते हैं, फिर भी लोग चार पापों से भयभीत रहते हैं, अवैध संबंध, मांसाहार, नशा तथा जुआ। जब भी कोई धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, जो लोग हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं, हमें उसका वास्तविक अनुभव है। जब भी हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन, कोई संकीर्तन उत्सव कलकत्ता, बंबई, मद्रास, अहमदाबाद या हैदराबाद जैसे किसी बड़े शहर में मनाता है, तो सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। कभी कभी हम अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अंग्रेजी ना समझने पर भी हमें सुनने आते हैं। जब भगवान के नकली अवतार भी बोलते हैं तो भी हजारों लोग एकत्र होते हैं, क्योंकि भारत भूमि में जन्मे हर व्यक्ति में सहज आध्यात्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है और उसे आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांत सिखलाए जाते हैं। उन्हें केवल वैदिक सिद्धांतों के विषय में कुछ और अधिक बताए जाने की आवश्यकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं, जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार। यदि भारतीयों को वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा दी जाए तो वह समग्र जगत के लिए सर्वाधिक उपयोगी कल्याणकारी कार्य संपन्न कर सकने में समर्थ है। आज कृष्ण भावना अमृत या भगवत भावना भी कमी के कारण सारा जगत अंधकार में है, क्योंकि यह जीवन चार प्रकार के पापों, मांसाहार, अवैध संबंध, जुआ तथा नशा से ढका हुआ है। अतएव लोगों को इन पाप कर्मों से दूर हटाने के लिए जोरदार प्रचार कार्य की आवश्यकता है। इससे शांति तथा संपन्नता आएगी, ठगों, चोरों और लंपटों की संख्या घटेगी और सारा मानव समाज भगवत भावनामय बनेगा। हमारे द्वार विश्वंभर में हमारे द्वार विश्व भर में सॉरी हमारे द्वार विश्व भर में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रसार का व्यवहारिक प्रभाव यह हुआ है कि सर्वाधिक पतित लंपट व्यक्ति भी उन्नत संत बन रहे हैं। तो हमारा इतिहास बता रहे हैं कि हम लोग क्या थे और धीरे धीरे सब लोग संत बन रहे हैं, आप सब संत बन चुके हैं। यह विश्व के लिए केवल एक भारतीय का विनम्र सेवा कार्य है। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशानुसार सारे भारतीय इस पद का अनुसरण करते तो भारत विश्व को एक अद्वितीय उपहार दे सकता था और इस तरह भारत महिमा चारों ओर फैलती। किंतु भारत तो अब एक दरिद्रता से ग्रस्त देश माना जाता है और जब भी अमेरिका या किसी अन्य अमीर देश का कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसे सड़कों के किनारे अनेक लोग लेटे हुए मिलते हैं जिन्हें दो समय भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। ऐसी भी संस्थाएं जो इन गरीब लोगों के कल्याण के नाम पर सारे विश्व से धन तो एकत्रित करती है किंतु उसे वे अपनी खुद की इंद्र तृप्ति के पीछे खर्च करते हैं। किंतु अब श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार कृष्ण भावना अमृत आंदोलन आरंभ किया गया है और लोग इस आंदोलन से लाभान्वित हो रहे हैं। अतएव अब भारत के अग्रगणी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि इस आंदोलन की महत्ता को समझे और अनेक भारतीयों को प्रशिक्षित करके इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए उन्हें भारत से बाहर भेजें। लोग इसे स्वीकार करेंगे, इससे भारतीयों तथा विश्व के अन्य लोगों में सहयोग बढ़ेगा और तब श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य पूर्ण होगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति सारे विश्व में फैलेगी और लोग न केवल इस जन्म में अभी तो अगले जन्म में भी स्वाभाविक रूप से सुखी शांत तथा समृद्ध होंगे, क्योंकि जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जो कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समझता है वह आसानी से जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा अर्थात मोक्ष पालेगा और भगवत धाम वापस जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक भारतीय से आग्रह करते हैं कि वह दुनिया को भयावह गड़बड़ी से बचाने के लिए उनके आंदोलन का प्रचारक बने। यह केवल भारतीयों को नहीं अभी तो हरेक का कर्तव्य है और हमें अत्यधिक प्रसन्नता है कि अमरीकी तथा यूरोपीय बालक तथा बालिकाएं हमारे इस आंदोलन में गंभीरतापूर्वक सहयोग कर रहे हैं। मनुष्य को यह निश्चित रूप से जान लेना होगा कि सारे मानव समाज के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी कार्य है मनुष्य में भगवत भावना या कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना। अतः हर व्यक्ति को इस महान आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 10:22-35 में की गई है जो अगले श्लोक के रूप में दिया गया है। भारत भूमि ते हुए मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक और कर परोपकार। जिसने भारत भूमि में मनुष्य जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। तो जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। सफल का मतलब क्या होता है? सफल बनाना चाहिए, बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत सारी गाड़ियां होनी चाहिए, बहुत धन होना चाहिए आपके पास बैंक अकाउंट में, और बहुत सारे आपके अनुयायी होने चाहिए, अनुचर होने चाहिए, और बहुत आपका यश होना चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आपकी होनी चाहिए समाज में। ये सबको ही सफलता कहते हैं नहीं? और जितनी भी ये सफलता के जो नए नए दृश्य दिखाए जाते हैं इस भौतिक जगत में, ये सब हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियां हैं। और याद रखिएगा, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है और जब तक ये परिस्थितियां बदलती रहेंगी तब तक आपको सुख होगा और दुख होगा। शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं अगर जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो परिस्थितियों के बदलने से हमारे सुख में जो है क्या आता है, दुविधा आती है, यानी सुख में बहुत बड़ी बाधा आती है। और अगर हम चाहते हैं कि सुख में बाधा ना आए तो परिस्थितियों को ना बदलकर हमारी मनस्थिति को बदलें। और मनस्थिति को तभी बदल सकते हैं जब वास्तविक रूप से समाज में सुधार होगा। किसी ने कहा कि सक्सेस इज की टू हैप्पीनेस, लेकिन भक्त कहते हैं हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस। सुख शांति आनंद जब मिल जाएगा आपको तो वही है वास्तव में सफलता, क्योंकि सुख शांति आनंद के लिए तो आप जीवन भर प्रयास कर रहे हैं, जीवन भर आप परिश्रम कर रहे हैं। और वो सुख शांति आनंद जो है भक्तों को केवल भगवान की सेवा से ही मिल जाता है। अन्नवयोभ्यासात् आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आनंद की वृद्धि होती है पद पद पर जैसे जैसे आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। जितना अधिक आप कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे उतना अधिक आप सुखी होते जाएंगे, उतना आपको आनंद प्राप्त होगा। फिर आप परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे। तो इन परिस्थितियों के बीच में समाज में अगर हम सुख शांति लाना चाहते हैं तो वो सबसे उत्तम तरीका है कि हम सबको कृष्ण भावना भावित बनाएं और स्वयं भी कृष्ण भावना भावित बने। जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार, यानी कि हरि नाम का वितरण करने से पहले हम लोग स्वयं हरि नाम लें, प्रसाद का वितरण करने से पहले स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। खाली पेट कितना प्रसाद बांट लेंगे आप, तो भर पेट प्रसाद ग्रहण करें फिर जाएं प्रसाद बांटने के लिए। फिर फूड फॉर लाइफ, गुड फॉर लाइफ, सब लाइफ हो सकता है बाहर, लेकिन पहले अपना पेट भरें, अपने पेट का भरण पोषण करें, स्वयं कृष्ण भावना भावित हो, भगवान का दर्शन स्वयं करें, स्वयं श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, स्वयं भक्तों का संग करें। जब ऐसा स्वयं करेंगे तभी आप दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे करने के लिए, और स्वयं ही नहीं करेंगे तो प्रेरणा कैसे आएगी? आपके हृदय में कोई प्रेरणा नहीं आएगी ये प्रचार करने की। प्रचार करने की शक्ति के लिए, प्रचार करने की जो शक्ति है, ऊर्जा, हाँ, जिसको कहते हैं एनर्जी कहते हैं, श्रीमती राधा रानी कौन है? ऊर्जेश्वरी है। तो ऊर्जेश्वरी से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? जब क्या करते हैं, उस ऊर्जेश्वरी का आश्रय लेते हैं। महात्मानास्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञातवा माम। तो ये ज्ञातवा माम भूतादि अवयम, या कहने का मतलब यह है कि महात्मा जो होते हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने का मतलब ही है कि आप श्रीमती राधा रानी का आश्रय ले चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्रबोधानंद सर ठाकुर ने चैतन्य चरणामृत में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनेगा। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि। क्या मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जितना अधिक आप चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेंगे, उनके संकीर्तन आंदोलन का आश्रय लेंगे, तथा तथो उपसर्पति हृदय अकस्माल राधा पदाम्बुज सुधाम्बु राशि। वो कह रहे हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु का अगर आश्रय लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसी समय तत्काल राधा रानी के चरणों से जो अमृत निकल रहा है वो आपके हृदय में प्रवेश करेगा। जितना अधिक आप महाप्रभु की शरण लेंगे उतना अधिक राधा रानी की कृपा मिलते रहेगी, साथ साथ आप राधा रानी के चरणामृत आपके हृदय में प्रवेश करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का मतलब है श्रीमती राधा रानी का आश्रय। और राधा रानी का हृदय कैसा है, चैतन्य महाप्रभु का हृदय कैसा है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तिष्वे नमः। महावदन्याय श्री चैतन्य महाप्रभु, यानी कि बहुत बड़ा दान करने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में, और ये दान सबको दे रहे हैं। पात्र कौन है इस पे विचार नहीं कर रहे हैं, कौन पात्र है कौन पात्र नहीं, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, इस पे विचार नहीं कर रहे हैं। और बिना विचार किए चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरसा रहे हैं, सबको दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इस पात्र में छिद्र नहीं होने चाहिए। अगर उस पात्र में छिद्र होंगे तो क्या होगा, कृष्ण प्रेम की वर्षा जब होगी तो उस पात्र के छिद्र से वो सारी जो है कृपा निकल जाएगी। उसको धारण करना होगा, हमें उस कृपा को धारण करना होगा। ऐसा हमारा पात्र होना चाहिए, ऐसा हमारा हृदय होना चाहिए कि उसको हम धारण कर सके। अगर धारण नहीं कर पाएंगे तो वो कृपा फिर निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है, धारण करने का मतलब क्या है? धारण करने का मतलब है शरणागति। धारण करने का मतलब है कि मैं चाहता हूं, इस कृपा को चाहता हूं, मैं इस कृपा को धारण करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मैं इस कृपा को लेना चाहता हूं, हृदयंगम करना चाहता हूं मैं इस कृपा को। और जब इस प्रकार की भावना आएगी तब देखिए वो कृपा जो है रुकती है अंदर, नहीं तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि हम जबरदस्ती हमसे की जा रही है, या फिर फोर्स किया जा रहा है, हमें पुश किया जा रहा है, हमें धक्का दिया जा रहा है, हमारी इच्छा नहीं है। तो कृष्ण को इस प्रकार की सेवा जो है स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि भगवान को जो है सेवा की आवश्यकता नहीं हमारी। वास्तव में देखा जाए कृष्ण जो है बद्ध जीवात्माओं से सेवा नहीं लेते हैं, क्योंकि बद्ध जीवाओं के पास, बद्ध जीवात्माओं के पास अधिकार नहीं है कृष्ण की सेवा करने का। जैसे कि मान लीजिए तिहाड़ जेल में जो कैदी है, वो कैदी जो है केवल तिहाड़ जेल के दायरे में रहते हैं और वहां जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार उनको चलना पड़ता है। बाहर सरकार तक पहुंचना, बाहर के कार्यक्रम में भाग लेना, बाहर शहर में क्या हो रहा है उससे कोई उनको सरोकार नहीं है और कोई अधिकार नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम भी कैद खाने में बंद है। केवल वो व्यक्ति जो कैद खाने में नहीं है एक मुक्त पुरुष भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसका जब आश्रय लेते हैं तब बद्ध जीवात्माओं की सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, अन्यथा हमारा तो अप्रोच ही नहीं है कृष्ण के लिए, तो हम कृष्ण तक पहुंच ही नहीं सकते। किसी ने हमें उस दिन बताया था कि गुरु अष्टकम जो है प्रभु जी आप दो दो बार गाते हैं एक एक लाइन मंगल आरती में, तो उसमें तो 95% जो मंगल आरती निकल जाती है, महामंत्र का कीर्तन हो ही नहीं पाता। अब एक एक बार गाएं तो अच्छा रहेगा ताकि हम और महामंत्र का कीर्तन कर सकें। तो हमने ये कहा कि पहले तो हमारे तो तीन ऑल्टर हैं और दंडवत करते करते ही आधा गुरु अष्टकम निकल जाता है, कि हर व्यक्ति जो है हर भक्त जो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो शंख बजते ही कुछ भक्त लोग मैक्सिमम भक्त उसी समय पहुंचते हैं, तो उस समय तीनों ऑल्टर्स में दंडवत करेंगे तो आधा गुरु अष्टकम निकल जाता है। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि गुरु अष्टकम का हम दो बार जब पाठ करते हैं तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो वास्तव में अप्रोच है, हमारा जो वास्तविक संबंध है, हमारा जो क्या कहते हैं एक्सेस है जिसको कहते हैं, वो केवल अपने गुरु तक है या वैष्णव तक है। सीधे कृष्ण के पास हम नहीं पहुंच पाते, इसलिए हमारे लिए गुरु अष्टकम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो प्रार्थना है हो सकता है कृष्ण सुने ना सुने, लेकिन गुरु अष्टकम जब गाते हैं और गुरु का गुणगान करते हैं, गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं, वो प्रार्थना जो है निश्चित रूप से कृष्ण तक पहुंचती है। आप समझ रहे इस बात? तो इसलिए हमारे परंपरा में आचार्यों की जो आज्ञा है, गुरु परंपरा की जो आज्ञा है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच है, उससे आगे पहुंच नहीं है। तो इसलिए ये अधिकार हमें मिल रहा है गुरु के द्वारा। जैसे यहां पर चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात कह रहे हैं इसी अध्याय के श्लोक संख्या 36 में, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एकला उठाइया दिते होए परिश्रम, नहीं ये नहीं, अतएव आमी आज्ञा दिलु सभा कारे जहां तहां पे प्रेम फल देह चारे तारे। अतएव मैं इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूं कि अब इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को स्वीकार करे और इसे सर्वत्र वितरित करे, सर्वत्र वितरित करे। कई बार ऐसा होता है जी चैतन्य चरितामृत में कई जो बंगाली के श्लोक है, अब उसका यथारूप अनुवाद देखेंगे तो लगेगा कि ये अनुवाद तो एग्जैक्टली ये नहीं है। कई संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान आरोप लगाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का जब श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, बोलते हैं संस्कृत का अनुवाद ठीक से नहीं हुआ अंग्रेजी में, उसमें कई प्रकार की त्रुटियां देखते हैं, दोष देखते हैं। आप सुना होगा आपने, इसका ये अर्थ तो नहीं निकल रहा है, इसका ये अर्थ तो नहीं निकल रहा है, इसका ये अर्थ निकल रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात चलिए मान लीजिए एक क्षण के लिए, हालांकि प्रभुपाद भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, मान लीजिए प्रभुपाद के संस्कृत के अनुवाद में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो गया, लेकिन प्रभुपाद जी का जो बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद है इसमें तो कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो उनका क्या है मदर टंग है, बचपन से ही प्रभुपाद बंगाली बोलते आ रहे हैं। और इस बंगाली प्यारों में यानी कि चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे जो एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग अगर ढूंढना लगेंगे तो आपको वो अनुवाद नहीं मिलेगा जो आप वास्तव में चाहते हैं लिटरली, क्योंकि ये जितने भी अनुवाद है चैतन्य चरितामृत में हो, श्रीमद् भागवत में हो या भगवद गीता में है, ये केवल अनुवाद नहीं है, अर्थानुवाद नहीं है, ये भाव अनुवाद। और भाव अनुवाद वही कर सकता है जिसके हृदय में भाव हो भगवान के लिए, जो कृष्ण भावना भावित हो वो ही भावार्थ प्रस्तुत कर सकता है इन श्लोकों का। इसलिए ये कहना जो है बिल्कुल निरर्थक होगा कि प्रभुपाद जी को बंगाली नहीं आती। तो कहने का अर्थ ये है, तो इसलिए प्रभुपाद ने यहां पर जो है एसेंस दिया चैतन्य चरितामृत का। और प्रभुपाद ने आप जानते हैं कि चैतन्य चरितामृत का अनुवाद बहुत कुछ ही सालों में किया था, कुछ ही सालों में क्या 18 महीने में पूरा किया था चैतन्य चरितामृत का अनुवाद बंगाली में से इंग्लिश में। और आगे क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या बता रहे हैं, अतएव सब फल देह जारे तारे खाइया होकर लोग अजर अमरे। फिर क्या बोल रहे हैं, इस कृष्ण भावना अमृत का आंदोलन का वितरण सारे विश्व में करो जिससे सारे लोग इन फलों को खाकर अंततः वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। तो चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा है हमें गुरु परंपरा के माध्यम से मिल रही है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने रूप गोस्वामी के लिए कहा, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है वो जानते थे, कौन श्री रूप गोस्वामी जानते थे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि आप मनोभीष्ट को जानने वाले चैतन्य महाप्रभु का, और पूरे भूतल में आपने स्थापित किया है वो मनोभीष्ट। कौन बोल रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, रूप गोस्वामी के लिए उन्होंने प्रार्थना लिखी प्रेम भक्ति चंद्रिका में, और वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया, महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूरे भूतल में स्थापित किया। भूतल में कहां स्थापित हुआ था उस समय? नहीं, यानी कि कह दिया उन्होंने तो हो गया समझ लीजिए, लेकिन केवल क्या है, समय जो है अलग कर रहा है, और प्रभुपाद ने उसको वास्तव में भूतल में ही स्थापित करके दिखाया इन ग्रंथों के माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। प्रभुपाद ने पूरे भूतल में महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया है। चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। और इस कारण से क्या है, जो भी इस भूतल में रहकर इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को स्वीकार करता है, निश्चित रूप से उसको महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये सब जो हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि प्रभुपाद यहां पर जो तात्पर्य बता रहे हैं, भारतीयों का कर्तव्य बता रहे हैं कि भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है उसका क्या कर्तव्य है, उसको जन्म सार्थक बनाना चाहिए। सार्थक बनाने का मतलब यह है कि कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। सार्थक बनने का मतलब क्या है, कृष्ण भावना भावित होना, और कृष्ण भावना भावित होकर क्या करना है, दूसरों को भी कृष्ण भावना भावित होना है। और इसके लिए इंतजार नहीं करना है हमें कि हम पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तब हम दूसरों को कृष्ण भावना भावित बनाएंगे, इंतजार नहीं करना है उसका। जितना अधिक हम कृष्ण भावना भावित होते हैं उतना ही दूसरों को कृष्ण भावना भावित बनाना है। प्रभुपाद एक किंग ऑफ नॉलेज बुक है, उसमें यही लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इफ यू हैव टू टीच ABCDEFG यू डोंट हैव टू बी अ PhD। ABCD सिखाने के लिए आपको PhD की आवश्यकता नहीं है। तो जितना आप जानते हैं उतना पढ़ाइए आप। और कई आप देखते हैं, कई लोग स्टूडेंट्स भी होते हैं वो पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन में नहीं किया होता उन्होंने लेकिन वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जितना वो जानते हैं उतना पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से जितना आप जानते हैं उतना प्रचार करिए। तो इस तरह से क्या है कि लोग जो है इन बातों को समझेंगे। तो इस प्रकार कई प्रकार से जो है प्रचार किया जा सकता है। और इस आंदोलन में देखा जाए जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब प्रचार का कार्य है। आप जानते हैं हमारे आंदोलन में सबसे बड़े प्रचारक कौन है, हमारे DTs राधिका रमन जी, कृष्ण बलराम, गौर निताय और राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, राधा पार सारथी, जितने भी DTs हैं, केवल यही नहीं सारे ये सबसे बड़े प्रचारक हैं। क्योंकि ये ना हो तो हमारा प्रचार का कार्य बंद हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के लिए प्रचार हो रहा है। और इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं। किसी ने कहा कि आप जो है वस्त्र जब पहनाते हैं तो कपड़ों में भी धागा लगा देते हैं और धागे को ऊपर बांध देते हैं, आपने तो इसको विग्रह नहीं सोचा है, इसको व्यक्ति नहीं सोच रहे आप, आपने इनको तो मूर्ति बना दिया है, ये हर जगह धागा धागा क्यों लगाया हुआ है। बात सही है बिल्कुल, सिद्धांतिक दृष्टि से इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला है। लेकिन देखिए, इसलिए प्रभुपाल ने क्या बताया, जानते क्या बोला प्रभुपाल ने, कहा कि द मूड ऑफ द आचार्यस में डिफर बट देयर गोल इज सेम। कि आचार्यों का क्या होता है, मूड अलग होता है। और हमारे प्रभुपाद जी का मूड क्या है कि प्रभुपाद कोई भी भक्ति का अंग क्यों ना हो, कोई भी सेवा क्यों ना हो, उसके द्वारा प्रभुपाद क्या करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। इसलिए क्या, इतना सुंदर श्रृंगार हम करते हैं कि देखने में सुंदर सुंदर लगे, कि एक नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भगवान का दर्शन करे तो उसको लगे कि इस्कॉन के मंदिरों में आपके जो DTs है ऐसा लगता है बोल रहे हैं, बोलते नहीं बोलते, एक ऐसा व्यक्ति भी बोलता है जो भक्त नहीं है। तो इसलिए क्या है कि विग्रह का सुंदर श्रृंगार, उनकी सेवा फर्स्ट क्लास प्रभुपाद ने कहा, ताकि लोग दर्शन करके कृतार्थ हो जाएं, कृष्ण भावना भावित हो जाए। मंदिर की सफाई ये भी एक प्रचार है। जैसे वृंदावन में प्रभुपाद ने हरीश्वरी प्रभु खड़े थे और एक भक्त को प्रभुपाद डांट रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कि रिमूव दिस डर्ट, ये गंदगी क्यों है, यहाँ सफाई करो। वृंदावन में प्रभुपाद कह रहे हैं ऑल्टर के बाहर खड़े होके, तो भक्त ने कहा कि प्रभुपाद दिस इज ब्रज रज। तो प्रभुपाद कहते हैं रास्कल आई एम टेलिंग यू क्लीन इट। तो प्रभुपाद कहते हैं, तो बोल रहा हूं साफ करो। तो अब देखिए बात सही है, सिद्धांत बिल्कुल सही है, ब्रज रजी है वो, तो ये थोड़ा कि दिल्ली का धूल लेके, ब्रज का ही रज है वो। और प्रभुपाद कहते हैं सफाई करो। और आज अब वृंदावन जाते हैं लोग, दिल्ली से लोग बोलते हैं आपका एक इस्कॉन का मंदिर है जो सबसे साफ रहता है। तो प्रीचिंग का मूड देखिए प्रभुपाद जी का, हर आप देखिए हर सेवा में प्रभुपाद का प्रचार का मूड है।
कुकिंग भी है, प्रभुपाद जी का ठाकुर जी को भोग बनाया जाए, नाना प्रकार के भोग बनाए, हो सके तो 56 भोग बनाया जाए डेली। राधा रास बिहारी जी मंदिर में होता है बंबई में, जुहू टेम्पल में राधा रास बिहारी जी को डेली 56 भोग लगता है, डेली 56 भोग। मायापुर में राधा माधव को डेली 56 भोग लगता है, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहां पे सीमन द्वीप में, वहां पर भी डेली 56 भोग लगता है। तो प्रभुपाद जी इस तरह का स्टैंडर्ड चाहते थे प्रभुपाद हमारे टेम्पल्स में, इस्कॉन टेम्पल्स में, क्योंकि ये सब करने से क्या है, ये सब के माध्यम से क्या हो रहा है, एक्चुअली हमारा प्रचार हो रहा है और डायरेक्ट प्रीचिंग, यहाँ पे ग्रंथों का वितरण, प्रसादम का वितरण, इससे तो लोग कृतार्थ होते ही हैं और उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। एक आपको घटना बताते हैं अफ्रीका की। एक हमारे अफ्रीका के एक डिवोटी हैं जिनका नाम है श्रीवास प्रभु है उनका नाम, और वो अफ्रीका के GBC भी हैं, और वो कैसे भक्त बने आप जानते हैं। तो एक बार क्या हुआ, रात के समय उनको एक सपना आया, एक्चुअली वो बहुत ड्रिंक करते थे पहले, वो बहुत ड्रिंक करते थे, तो रात को एक सपना आया और उन्होंने 3 भयानक लोग देखे, बिल्कुल डरावने लोग, चेहरे उनके टेढ़े मेढ़े थे और बाल उनके खड़े हुए थे और शरीर से दुर्गंध आ रही थी, काले एकदम से, और बहुत ही भयावह लग रहे थे देखने में, और एकदम से उनका शरीर कांप गया और उनका हाथ पकड़ा था उन्होंने, और हाथ जैसे पकड़ा तो ये बस चिल्लाए, और रात्रि को अर्ध रात्रि को वहां से भागे बाहर। और उसके बाद फिर क्या हुआ, तो वहां के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्या रात को इतना चिल्ला रहे हो, रात को बाहर क्यों भाग रहे हो उस तरह से। बोलते मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बड़े डरावने लोग थे वो। और अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, तो ये जब बाहर जाने लगे तो उस इलाके में भक्त लोग जो है कीर्तन कर रहे थे और ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, और एक भक्त के हाथ में श्रीमद् भागवतम भी थी, और श्रीमद् भागवतम, अगर आप श्रीमद् भागवतम आपके पास है, देखिए 6th कैंटो श्रीमद् भागवतम का, तो श्रीमद् भागवतम का जो 6th कैंटो है उसके बैक साइड में आप देखेंगे वहां पे एक पिचित्र है विश्वदूतों का और यमदूतों का, देखा आपने फोटो। तो वो किताबें जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो ये जो व्यक्ति थे अफ्रीकन व्यक्ति, उनके संपर्क में आए और उनसे वो किताब ली, किताब के मतलब किताब उन्होंने देने की कोशिश की उनको, आप लीजिए लीजिए करके। तो किताब जब उन्होंने पलट के देखी तो वो फोटोग्राफ देखा उन्होंने विश्वदूतों का यमदूतों का, और वो किताब हाथ में लेके कांपने लगे। वो बोले क्या हो गया, आप किताब लेके डर रहे हो, क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, ये जो आप फोटो आपने जहाँ पेंटिंग बनाई है ये किसकी है, ये जो ये बड़े डरावने लग रहे हैं देखने में, ये किसकी फोटोग्राफ है। बोलते हैं ये यमदूत है और ये विष्णुदूत है, जो डरावने लग रहे हैं वो यमदूत है। बोलते हैं इनको तो मैंने कल रात को देखा, मेरे पास आए थे ये, मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, मैं चिल्ला के बाहर भाग रात को, आधी रात को ही। तो भक्त ने कहा फिर क्या किया आपने इसके लिए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप जानते हैं जो ग्रंथ है ना, इसमें कथा है अजामिल की, और से बताया गया कि इस तरह से जो यमदूत आए थे उसको लेने के लिए जीवन के अंतिम समय में, और कैसे विश्वदूतों ने रक्षा की। इस आप ग्रंथ को पढ़ेंगे और इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपका सारा डर दूर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यमदूतों से बचा जाए, और यही नहीं जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। उन्होंने तुरंत श्रीमद् भागवतम को खरीद ली और सबसे पहले उन्होंने भागवतम का 6ठा स्कंद पढ़ा और खासकर अजामिल का प्रसंग, और इस तरह से वो भक्त बने। अभी वो कैलिफोर्निया सॉरी अफ्रीका में GBC भी है, और आजकल मायापुर आते हैं साल में एक बार, मायापुर में भक्ति वैभव भी पढ़ाते हैं। तो ये देखिए चमत्कार ग्रंथों का जो है चमत्कार, बड़ा ही अद्भुत चमत्कार है कि ऐसे से लोग भक्त बन गए जहां पे लोग मतलब क्या है कि वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं है। ये जो देश है अफ्रीका है, यूरोप है, अमेरिका है, ये लोग वर्णाश्रम धर्म में नहीं आते। किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर यवना शुंभा खशादया, ये सब क्या है वर्णाश्रम धर्म में नहीं। किराट यानी कि अफ्रीकन जो है, हुना या फिर ये खस रेज जिसको कहते हैं, प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे वर्ड भिणी में कौन से कंट्रीज है सब, तो खस रेज मंगोलिया से महाभारत में सबका वर्णन किया गया है। मंगोलियन जो होते हैं उनको खस रेज कहा जाता है, किराट जो है अफ्रीकन है, मलेशियावन यानी कि अब क्या बताएं। और इससे भी गिरे होते हैं चंडाल, मनुष्य योनि में सबसे अधम जो माना जाता है वो कहते हैं चंडाल, चाइना कोरिया ताइवान ये सब चंडाल देश। क्या खाते हैं यहाँ पे, कुत्ता खाते हैं, कुत्ता खाते हैं यहाँ पर। और ये देखिए अद्भुत चमत्कार श्रील प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी के जो भगवत गीता है एज इट इज उसका अनुवाद हो गया चाइनीज भाषा में, और आज आपको श्रीमद् भागवतम मिलेगा चाइनीज लैंग्वेज में चाइनीज लैंग्वेज में। सुखदेव गोस्वामी भी हैरान हो रहे होंगे आज देखिए परीक्षित महाराज सोच रहे होंगे अरे चाइनीज लैंग्वेज में सब श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, वाह क्या चमत्कार है देखिए। और चाइना में देखिए वहां पे कैसे प्रीचिंग हो रहा है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप, कितने चाइनीज जो है श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं आप, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है कि चंडाल देश है, इसलिए क्या है हमारे पद्म पुराण में क्या दिया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदहा अवैष्णव गुरु न श्याल वैष्णव स्वपचो गुरु। स्वपच यानी कि कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी जो है अगर वो वैश्य बन जाता है तो वो गुरु बन सकता है। आप देखेंगे भविष्य में चाइना में गुरु देखेंगे आप, चाइनीज गुरु देखेंगे आप, कोरियन गुरु देखेंगे, और वो लोग प्रचार करेंगे, वो दीक्षा देंगे चाइना में। सोच सकते हैं आप कभी, वो चाइनीज जो कभी नहाते नहीं है, मुश्किल से नहाते हैं महीने में एक दो बार, इतनी दुर्गंध आती है उनके शरीर से, इसलिए ऊपर क्या सेंट डालते हैं, कोलोन डालते हैं ताकि कोई पहचाने नहीं कि क्या हुआ है। तो इस प्रकार जो है ये ग्रंथों के वितरण से इतना बड़ा चमत्कार हुआ है श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, इसलिए कहते थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे बृहत मृदंग। ये बृहत मृदंग नाम कैसे पड़ा, तो एक बार क्या हुआ कि गौड़िया मठ में शायद मायापुर में था या शायद मायापुर में ही था, तो वहां पे मंदिर के सामने गांधारवी का गिरधारी के भी डीटीज है वहां पे चेतन्य मठ में, तो उसके सामने वहां पे प्रिंटिंग प्रेस था, अभी प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं काम करता वहां पे, तो वहां पे किताबों की छपने की आवाज आती थी, तो किसी कुछ शिष्यों ने जाके बोला भक्ति सिद्धार्थ महाराज के गुरुदेव ये इस मशीन से बहुत आवाज आती है डीटीज के लिए बहुत डिस्टर्बेंस। तब उन्होंने भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने बोला था कि ये डिस्टर्बेंस नहीं है, ये बृहत मृदंग है, ये जो मशीन से जो आवाजें आ रही हैं क्योंकि इस मशीन के द्वारा ग्रंथ छपेंगे और उस किताबों की जो आवाजें हैं ग्रंथ की जो आवाज है बहुत दूर दूर तक जाएगी, 10,000 मील तक जाएगी, हजारों हजार मील तक जाएगी, और ये फैक्ट है। देखिए आपको एक घटना बताते हैं कि एक बार बर्मा के कुछ डॉक्टर्स हैं वो अमेरिका गए थे और वहां पे उनको जो है मैगजीन दी थी कुछ भक्तों ने बीटीजी बैक टू गॉर्डन मैगजीन, और बैक टू गॉर्डन मैगजीन उन्होंने अपने एक मित्र को दिया जो बर्मा में रहते थे, वो इंडियन थे, तो उस इंडियन फ्रेंड को ये बर्मीज डॉक्टर्स ने बीटीजी मैगजीन दिया पढ़ने के लिए। अब उसके बाद उनका जो लड़का था वो लड़का बीटीजी पढ़ने लगा और बीटीजी में के पीछे वहां पे लिखा था फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट, कोई पूछताछ हो आप प्रश्न पूछना तो आप कृपा करके संपर्क करें। वो उसको उन्होंने उसमें एक कूपन दिया हुआ था वो भर के जो है उन्होंने भेज दिया अमेरिका भेज, और कई दिनों के बाद अमेरिका वो भेजा वो पहुंचा वो, और उसके बाद उन्होंने पढ़ा कि बर्मा से इंक्वायरी आई है, और फिर वह अमेरिका में जो भक्तों ने क्या किया वहां बैंकॉक में एक भक्त जो है ग्रंथों का वितरण कर रहे थे उनको फोन किया, और उस भक्त का नाम था ईलापति जो वहां बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनको कहा कि इस प्रकार बर्मा से इंक्वायरी आई है क्या बर्मा जा सकते हैं। तो उन दिनों क्या था बर्मा जाने के लिए केवल 24 घंटे का ही वीजा मिलता था, तो 24 घंटे में जाके आना है वापस, तो अमेरिका से बर्मा गए सिर्फ उस व्यक्ति से मिलने के लिए जिसने ये बीटीजी पढ़ा था, और उसके बाद फिर गए बर्मा गए और वहां जाके 24 घंटे के अंदर अंदर जानते क्या हुआ, और ये भक्त मिले उस व्यक्ति से उस लड़के से, उसको प्रचार किया, चैंटिंग शुरू करवाया और भी ग्रंथ दिए, इस प्रकार से वो लड़का जो है भक्त बन गया, और जिस भक्त ने वो उनको किताबें दी थी और प्रचार किया था बैंकॉक से आके उनका नाम बाद में पड़ा हिजोलन भक्ति विकास स्वामी महाराज। हाँ यही मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो किताबों की आवाज कितनी दूर दूर तक जाती है, नहीं किसी को बीटीजी मिला है अमेरिका में और वापस बर्मा आ गए और बर्मा में उस लड़के ने पढ़ा वो मैगजीन में, उसको पूछताछ के लिए उसने इंक्वायरी की और फिर अमेरिका गया, अमेरिका से फोन आया बैंकॉक में, बैंकॉक से वो डिवोटी आता है बर्मा आता है और बर्मा आके क्या होता है उस लड़के को भक्त बना ले। तो ये है ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रभुपाद जी का इतना प्रिय है प्रभुपाद जी को, इसलिए प्रभुपाद वृंदावन में जब लेटे हुए थे और सुने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर सुना रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कि आई फील एनर्जेटिक लाइक ए यंग मैन, मैं जब भी सुनता हूँ कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर हमारा बढ़ रहा है तो मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ एक यंग आदमी की तरह। तब हम प्रचार करते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, और स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति जो है आपकी बात नहीं सुनेगा। कई प्रकार के कंप्लेंट्स होते हैं और कई प्रकार के दोषारोपण होते हैं हमें डिस्करेज करने के लिए, राइट? होता नहीं होता आप सबके साथ? आप सड़क पर जब जाते हैं तो लोग गालियां भी देते हैं। अगर देखिए, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए तो आरओ सिस्टम है, लेकिन ईगो को प्यूरिफाई करने के लिए एक ही सिस्टम है और वो संकीर्तन है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जितना आपका ईगो प्यूरिफाई होता है, शायद इतनी तेजी से और किसी सेवा से नहीं होगा। इतनी गालियां सुनने को मिलती है और कई जगह इतनी असफलता मिलती है, ऑटोमेटिकली आप रियलाइज करते हैं कि अभी आप उतने हाई लेवल के प्रचारक नहीं बने हैं जितना कि आप कल्पना कर रहे थे। YouTube में क्लिपिंग बना के छोड़ना बहुत आसान है, इट इज वेरी वेरी इजी, लेकिन सड़क में जाके एक व्यक्ति को कन्विंस करना, उसको ग्रंथ पकड़ाना, ये बहुत कठिन कार्य है। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। और जिसके ऊपर एक्चुअली प्रभुपाद जी की कृपा है वो ही इन ग्रंथों का वितरण कर सकता है, ये 100% फैक्ट। इसलिए आप सब भक्त लोग बड़े ही फॉर्चुनेट हैं कि आप जो है इस दिल्ली शहर में रह रहे हैं, जहां पे स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का वितरण किया। प्रभुपाद की बड़ी कृपा है दिल्ली शहर में। इसलिए क्या दिल्ली में एक क्रांति है, जगह जगह देखिए, पूरे दिल्ली में जाइए, हर कोने में कहीं ना कहीं भक्त मिलेंगे ग्रंथों का वितरण करते हुए। आतंकवादियों की तरह फैल गए हमारे भक्त, लोग घबराते देख के, अरे आ रहे इस कौन के वाले किताबें लेके, भागो भागो, या दरवाजे बंद कर लो, घर के दरवाजे बंद कर लो, कह दो कि मैं नहीं हूं ऑफिस में, सेक्रेटरी को बोलते हैं, या तो फोन ही नहीं उठा रहे। कई लोग ऐसे भी है, उसे हर साल कराते, इस साल फोन ही नहीं उठा रहे, वो फोन उठा ही नहीं रहे। कमाल है यार, हद हो गई। तो इस प्रकार भक्तों से बहुत भयभीत रहते हैं, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि हम कहीं कृष्ण भावना भावित ना हो जाए। कृष्ण से सब डरते हैं, सब डरते हैं कृष्ण से, और इतना डर लगता है कि आसपास के जो सगे संबंधी हैं उनको देखते हैं कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, बोलते हैं इस्कॉन में मत जाना, वैष्णो देवी चले जाओ, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में नहीं जाना है, क्योंकि वहां आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। वहां के लोग आपको जबरदस्ती ग्रंथ पकड़ा देंगे, आपको चैंटिंग करा देंगे, प्रसाद खिला देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, आपकी चेतना बदल जाएगी, और फिर हम आपके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, आप व्यर्थ हो जाओगे, बेकार हो जाओगे सोसाइटी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, असली समाज सेवा यही है कि आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। आप कैद खाने में जाते हैं, तिहाड़ जेल में क्या लोगों को क्या कैसे दिया जाता है, देखिए वहां दवाई दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है, सबको दिया जाता है, फिर भी वो कैदी कैदी रहते हैं, और जब कैद खाने से जब बाहर आते हैं फिर से क्राइम करते हैं, फिर कैद खाने में जाते हैं, फिर उनको खिलाया जाता है, फिर दवाइयां दी जाती है, फिर कपड़ा दिया जाता है। कितना खर्चा हो रहा है सरकार का, सोच के देखिए आप, लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है सरकार उन कैदियों को सुधारने के लिए। तिहाड़ जेल में डाल के रखा, हम जाके तिहाड़ जेल में देखे, 15,000-13,000 कैदी वहां पे, बस फुल हाउस फुल है, जगह कम पड़ती है। एक एक कमरे में ऐसा एक कमरा, एक हॉल है, हमने देखा, एक हॉल है, वहां टीवी चल रहा है, बीच में टीवी स्क्रीन भी लगाया है, आजकल मॉडर्न जेल्स में टीवी स्क्रीन भी है, बड़े मजे हैं उनके। और वो सब कैदी एक ही रूम में सबको लिटाया हुआ है, और बिल्कुल जो है भीड़ भड़का, बिल्कुल जगह नहीं है, आसपास लोग लेटे हुए हैं, और टोटली क्राउडेड प्लेस है, और क्या कहने का मतलब है, नर्क है एक्चुअली, जीता जागता नर्क है वो बेसिकली, तिहाड़ जेल तो लिविंग हेल है वहां पे तो। और उसके बाद कोई बाहर से आएगा, एनजीओ आएगा, कोई खाना बांटेगा, कोई दवाइयां देगा, कोई कपड़े देगा, या कोई एंटरटेनमेंट का कल्चरल प्रोग्राम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन देखिए कैदी कैदी फिर भी कैदी रह जाते हैं, सुधार हो नहीं पा रहा है, नहीं। और फिर सुधार कब हो सकता है, जब ये लोग कृष्ण भावना भावित, और जब कृष्ण भावना भावित होंगे तो ऑटोमेटिकली क्राइम रेट नीचे चला जाएगा आपका, क्योंकि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जब फॉलो करेंगे तो क्राइम होगा ही नहीं, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, देश का पैसा, सरकार का पैसा बचेगा। तो इस प्रकार का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इसके बारे में लोग सोच नहीं रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा है, ना साइंटिस्ट सोच रहे हैं, ना पॉलिटिशियन सोच रहे हैं, कोई लीडर नहीं सोच रहा है इस देश का, और केवल कौन सोच रहे हैं, केवल भक्त ही सोच रहे हैं। तो कई बार जो है लोग ये सुझाते हैं हमारे, एक बार रिपोर्टर ने बोला, और रिपोर्टर कई प्रकार की चैलेंजेस कर रहा था प्रभुपाद जी को, और कई प्रश्न पूछ रहा था, और प्रभुपाद का उत्तर दिए जा रहे थे, तो अंत में चैलेंज करने के लिए प्रभुपाद को उसने कहा, अब मान लीजिए समाज में हर व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो ये सरकार कैसे चलेगी, देश कैसा चलेगा, समाज कैसा चलेगा। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। प्रभुपाद कहते हैं देयर विल ऑलवेज बी फूल्स लाइक यू हु वॉन्ट बिकम कृष्ण कॉन्शियस। आपके जैसे मूर्ख हमेशा मौजूद होंगे जो कभी कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेंगे, इसलिए आप चिंता मत करो। तो बहुत सारे मूर्ख हैं संसार में, नहीं तो वो कृष्ण भावना भावित होना नहीं चाहते हैं। नास्तिक लोग होते हैं, देख के भाग जाते हैं। भक्त लोग ग्रंथ लेके आते हैं तो उनको देख के लोग डर जाते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता है। तो इस प्रकार ग्रंथों का वितरण जो है सबसे उत्तम कोटि की सेवा है। हमें याद आ रहा है प्रभुपाद जी की डिसाइपल है लेडी डिसाइपल राधा कुंड माता जी, जो पिछले 45 सालों से ग्रंथों का वितरण कर रही है। कितने साल से? 45 ईयर्स से। क्या उनका देखिए डेडिकेशन है प्रभुपाद जी के लिए, आप हैरान हो जाएंगे। उनका कॉन्शियस देखिए, ऐसा कॉन्शियस तो शायद हमारे अपने भक्तों में भी नहीं देखा जाएगा, कहना नहीं चाहिए लेकिन मतलब सच अ फैंटास्टिक कॉन्शियस। प्रभुपाद जी की डिसाइपल है, उन यहाँ पे दिल्ली टेम्पल हमारे आए थे और उनका हम ट्रीटमेंट करा रहे थे। उनको पार्किंसन भी है, लिवर की प्रॉब्लम भी है, और इससे भी ज्यादा भयानक क्या है, ब्लड कैंसर। उनका हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था और वो ठीक हो रही थी, शी वॉज गेटिंग क्योर्ड। उनका पार्किंसन जो है हफ्ते 10 दिन में उनका हाथ हिलना बंद हो गया। पार्किंसन में होता गया कि हाथ ऐसे ऐसे हिलता है, देखा आपने, तो वो हाथ उनका हिलना बंद हो गया ट्रीटमेंट से और काफी इंप्रूवमेंट हो रहा था। और हमारे एक ब्रह्मचारी भक्त को हमने लगाया हुआ था और हम भी बीच बीच में जाके उनको पूछते थे। वो जानते कि इनकी वाइफ है यशोमती नंदन प्रभु की वाइफ, जो गुजरात के जोनल सेक्रेटरी है, प्रॉपर डिसाइपल है, ये भी प्रॉपर डिसाइपल है, तो उनकी वाइफ है। तो हमने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, आपको जो हेल्प चाहिए हम देंगे, आप प्लीज अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो एक दिन उन्होंने बुलाया हमें, उस ब्रह्मचारी को भी बुलाया। वो कहते हैं कि मैं यहां से जाना चाहती हूँ वृंदावन। हमने कहा क्यों, आपका इलाज चल रहा है, आप तो ठीक हो रही हैं अब। उन्होंने कहा नहीं, प्रभुपाद जी ने हमें मना किया है कि गेस्ट हाउस में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए भक्तों को। आप वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने हमें मना किया है कि भक्तों को गेस्ट हाउस में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए, मैं वृंदावन जा रही हूं, मैं वही इलाज करा लूंगी। एक्चुअली वो एक तरह से टालना चाह रही थी, उन्होंने कहा मैं वही वृंदावन में इलाज करा लूंगी, मुझे मैं ब्रह्मचारियों से सेवा नहीं ले सकती, मैं तो गृहस्थ। और फिर बहुत उन्होंने पुश किया, मतलब काफी फोर्स किया उन्होंने कि नहीं 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 करके। तो फिर कहा ठीक है, अगर फिर हमने कहा ठीक है आपको हम कल छोड़ देते हैं वृंदावन गाड़ी में। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी का पैसा, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट, मैं खुद चली जाऊंगी बस में, बस यहाँ से बहुत जाती है यूपी रोडवेज की, और मैं वहां से आश्रम चौक से बस पकड़ लूंगी। फिर हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि ऐसा करिए कम से कम हमें अलाउ करिए कि आप हमको आश्रम चौक तक छोड़ सके बस स्टैंड तक। तो इतना उन्होंने अलाउ किया और उनको बस तक छोड़ा और बस से बैठ के वो चले गए वृंदावन धाम। और उन्होंने जानते एक और बात बोली, एक एक बात उनको याद है प्रभुपाद जी की। वो कहते हैं कि मैं जब मेरा जब एक बच्चा हुआ था पहला, तो वो बहुत बीमार था और मैं सामने वाले बिल्डिंग में रह रही थी, प्रभुपाद जी सामने वाले क्वार्टर्स में थे और मेरे कमरे में लाइट जल रहा था रात के वक्त भी, और लाइट पूरी रात जलता रहा। और अगले दिन फिर प्रभुपाद ने मुझे बुलाया, प्रभुपाद ने कहा कि आपके कमरे में लाइट जल रहा था रात को। उन्होंने कहा प्रभुपाद वो बच्चा बीमार था, वो रो रहा था, इसलिए प्रभुपाद ने कहा डोंट वेस्ट कृष्णा मनी। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण के पैसे को आप व्यर्थ मत गवाओ, पूरी रात क्यों बल्ब लाइट जला के रखा आपने। तो वो माता इतनी कॉन्शियस थी, वो इसलिए कह रहे थे कि मैं गेस्ट हाउस में इसलिए रहना चाहती हूँ कि प्रभुपाद का पैसा जो है मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, यहाँ पे लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है, तो ये पैसा मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। और वृंदावन चले गई। वृंदावन जाने का क्या रीजन था जानते हैं, कि वहां पे तमाल वृक्ष के नीचे खड़े होकर वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटना चाहती थी, इस वजह से, क्योंकि इतने दिन से वो ग्रंथों का वितरण नहीं कर पा रही थी, कमरे में रह रहकर जो है वो परेशान हो गई कि मुझसे सेवा नहीं हो रही है, प्रभुपाद जी की सेवा बंद हो गई है, और इस कारण से वो चली गई वृंदावन और वहां पे ग्रंथों का वितरण कर रही है। एक दिन रात को सपने में एक सन्यासी आया और वो सन्यासी सपने में आके कहता है कि आपका नाम तो राधा कुंड देवीदासी है, आप यहाँ पे क्या कर रही हो वृंदावन में, आपको तो राधा कुंड जाना चाहिए, इस तरह का कोई सपना देखा। वो अगले दिन राधा कुंड जाने के लिए तैयारी करने लगे, शायद उनको लगा कि ये जो है मुझे प्रेरणा मिल रही है। और किसी सन्यासी से, और अगले दिन जब पैकिंग वैकिंग करने लगे तो किसी कारण से रुकना पड़ा उनको, उसे जा नहीं पाए अगले दिन। फिर रात को सपने में प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद क्या खड़े हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में खड़े हैं तमाल वृक्ष के सामने। तमाल वृक्ष आप देखा होगा वहां पे बोट फेस्टिवल में, वो सारा एरिया जो है जल से भर दिया जाता है और प्रभुपाद उस जल के बीच में खड़े हुए हैं और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, लाओ लाओ बुक्स, लाओ बुक्स, लाओ ग्रंथ लाओ, और ग्रंथ मंगवा रहे हैं प्रभुपाद, बुक्स मंगवा रहे हैं प्रभुपाद, किताबें बांट रहे हैं। प्रभुपाद उस जल में खड़े होके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और एक अचानक उन्होंने माता जी को क्या कहा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जहां खड़ा हूं ना वो जानते मैं कहां खड़ा हूं, मैं राधा कुंड में खड़ा हूं, मैं राधा कुंड में खड़े होकर ग्रंथों का वितरण कर रहा हूं। बोलते हैं इस बात पे पूरा विश्वास रखो, यकीन करो, केवल तुम अगर ग्रंथों का वितरण करोगी तो तुम्हें राधा कुंड में वैसे ही प्रवेश मिल जाएगा। इस कृष्ण बलराम मंदिर में संपूर्ण आध्यात्मिक जगत है, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल राधा, केवल तुम ग्रंथों का वितरण करो, तुम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम जहां जाना चाहती हो वहीं पे तुम्हें अपना स्थान मिलेगा, लेकिन तुम केवल ग्रंथों का वितरण करो, कहीं जाओ मत। ये सपने में देखा अगले दिन। एक दिन पहले क्या देखा उन्होंने, एक सन्यासी को देखा ये कहते हुए कि आपका नाम तो राधा कुंड है, राधा कुंड जाइए। और अगले दिन सपने में प्रभुपाद क्या कहते हैं, राधा कुंड और कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, राधा कुंड यहीं पे राधा कुंड है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसी राधा कुंड में खड़े होकर मैं क्या कर रहा हूं, ग्रंथों का वितरण कर रहा हूं। तो इस प्रकार का जो अटूट विश्वास है, कॉन्फिडेंस है प्रभुपाद जी में, ये देखिए तभी हो सकता है जब किसी का अटैचमेंट हो गुरु से, वैष्णव से। जब तक अटैचमेंट, स्ट्रांग अटैचमेंट नहीं होगा ना, तब तक आप देहात्म बुद्धि से ऊपर नहीं उठ सकते। जब तक आकर्षण नहीं होगा नाम में, हरि नाम में, भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, इस प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक हम देहात्म बुद्धि से नहीं ऊपर उठ पाएंगे। और उनको भय नहीं है बिल्कुल कि मुझे कैंसर है, मुझे इतनी सारी बीमारियां लगी हैं, उनको क्या चिंता है कि प्रभुपाद जी की बुक्स मैं नहीं बांट पा रहा हूं। क्या कॉन्शियसनेस देखिए उनका, नहीं ऐसी कॉन्शियसनेस, ऐसी भावना जो है जब होगी हर भक्त में होगी, चमत्कार हो जाएगा। देखिए इतने ग्रंथ का वितरण कर पाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। तो इस प्रकार का डिटर्मिनेशन, इस प्रकार का जो क्या कहते हैं एंथुजियाज्म जो है, वो तभी आता है जब हमें प्रभुपाद जी से इस प्रकार हमारा अट्रैक्शन होता है, हमारा अटैचमेंट होता है प्रभुपाद जी से, और उसकी आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए कितने लोग संसार में जो है कष्ट पा रहे हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं लोग, बाहर ऐसी दुर्दशा है लोगों की कि वो लोग जानते भी नहीं है कि वास्तव में जीवन में जो है कोई कष्ट भी है, कष्ट को जो है वही सुख मान पड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति का क्या मतलब, क्या एक सूअर भी सोच रहा है मल खाते हुए कि मैं बहुत सुखी हूं, तो लोग अपने आप को बहुत सुखी समझ रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, ग्रंथों का वितरण बहुत जरूरी है, और जितना अधिक हम ग्रंथों का वितरण करेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा, उतना हम भक्त बनेंगे। आप चिंता मत करिए कि लोग भक्त बन रहे नहीं बन रहे, आप ये चिंता करिए कि आप भक्त बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। कृष्ण की चिंता ये है, कृष्ण ये चिंता कर रहे हैं कि हम भक्त क्यों नहीं बन पा रहे ठीक से, कृष्ण की चिंता ये है कि हम शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता है कृष्ण की। लोग नहीं आ रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग आ चुके हैं वो क्यों नहीं पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, वो सिद्धि की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वो आध्यात्मिक जगत जीवन में गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं, आने के बावजूद भी वो गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं, जानने के बावजूद भी हम गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं भक्ति में, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है, शीतलता क्यों आ गई हमारे भक्ति में, शुरू में जो गंभीरता थी, जो आनंद आता था हमें, जो आकर्षण था, जो एंथुजियाज्म हुआ करता था, जो डिटर्मिनेशन हुआ करता था, वो दिन भर दिन क्यों ड्राई होता जा रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ हमारा क्यों सूखता जा रहा है, इसका कारण क्या है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, यज्ञ दान और तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये तो महात्माओं को भी शुद्ध करता है, यज्ञ दान और तपस्या। तो इन तीनों में जब भी कमी आएगी तब भी हमारा तब क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। यज्ञ दान और तपस्या, इसमें जब भी कमी आएगी आप देखेंगे हमारा शुद्धिकरण जो है कम होने लग जाएगा। तो शुद्धिकरण यानी शुद्धि को बढ़ाने के लिए, पवित्रता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, अधिक से अधिक यज्ञ करना होगा, दान करना होगा और तपस्या करनी होगी। और मान के चलिए कृष्ण भावना की जो सेवा है, अगर आनंद आने लग जाएगा तो फिर तपस्या नहीं है। और दान की बात, जहां तक दान की बात है, अगर आप कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं तो स्वतः ही दान देंगे आप, जैसे आपने मायापुर में देखा होगा नवदीप मंडल परिक्रमा के समान, नवदीप मंडल परिक्रमा के दौरान होता क्या, सुबह सब स्नान करने जाते हैं, ढाई तीन बजे उठ जाते हैं कई भक्त, जैसे रशियन डिवोटीज आप देखेंगे, हम जो उठते हैं उससे वो जप कर रहे होते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, नहाने जाते हैं सब लोग भक्त लोग, जब नहाने जाते हैं तो टैंक के नीचे नहाते हैं, वो टैंक में कई सारे नलके लगे होते हैं, आप समझ रहे, और पानी जो है ओवरफ्लो करता है, ओवरफ्लो जब करता है तो उसमें बड़ा आनंद आता है, और सब एक साथ नहा लेते हैं, फटाफट साबुन लगा लेते हैं, उनको पता है कि ओवरफ्लो होने वाले उससे पहले साबुन लगा लेते हैं, और एक साथ स्नान हो जाता है कि झटके में वॉटरफॉल की तरह ऊपर से पानी गिरता है। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गोर्तिश्वे नमः। ओवरफ्लो करता है, ये कृष्ण की कृपा ओवरफ्लो करती है, औदार्य इसको कहते हैं, एक माधुर्य एक औदार्य, ब्रज की लीला ये माधुर्य है और गौरंग महाप्रभु की लीला है वो औदार्य है। जैसे शहद का बोतल है, शहद के बोतल में शहद बंद है, मीठा बहुत है लेकिन केवल खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जब ओवरफ्लो होता है, जब वो शहद उस ढक्कन से बाहर निकल रहा होता है, टपक रहा होता है शहद, उस शहद को अगर खाते हैं उसको कहते हैं औदार्य। तो कृपा इस तरह से बरसनी चाहिए। यानी कि किसी ने बड़ा अच्छा बताया था हमें बहुत साल पहले, किसी ने कहा कि प्रीचिंग इज लाइक बेल्चिंग, प्रीचिंग इज लाइक बेल्चिंग, कहने का मतलब है जब आप बहुत भरपेट खा लेते हैं, प्रसाद पा लेते हैं, तो फिर डकार आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब सिग्नल मिल जाता है कि पेट भर चुका है आपका, आप समझ रहे हैं। तो प्रचार क्या है, उस डकार के समान है, कहने का मतलब है जब आप कृष्ण भावना भावित होने लगते हैं श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली जो क्या होगा, प्रचार करें, आप कृष्ण कथा किए बगैर रहेंगे नहीं, आपके हृदय से स्वाभाविक जो है दया जागृत होगी उन जीवात्माओं के लिए जो संसार में कष्ट पा रहे हैं, और वो कृपा देना चाहेंगे, उनको कृष्ण भावना भावित बनाना चाहेंगे, आपके हृदय में ये बात आएगी कि स्वयं रसगुल्ला मैंने खा लिया, इनको क्यों नहीं मिल रहा वो रसगुल्ला, ये क्यों करेला खा रहे हैं, ये नीम क्यों खा रहे हैं, करेला क्यों खा रहे हैं, इनको भी मैं रसगुल्ला देना चाहता हूं, इस प्रकार की दया आपके हृदय में स्वतः ही प्रकट होगी, तो यज्ञ भी हो गया, दान भी हो गया और तपस्या भी होगी। तपस्या तो है ही नहीं, रसगुल्ला खाने में कोई तपस्या होती है क्या बताइए, जलेबी खाने में कोई तपस्या होती है, तब जब आपको जलेबी वाला आनंद जब आएगा कृष्ण भावना में, तो फिर कोई तपस्या तपस्या नहीं रह जाएगी, फिर तो आनंद ही आनंद आएगा। जैसे गुंडीचा मंदिर मार्जन में महाप्रभु के साथ सैकड़ों भक्त लगे थे, मंदिर का मार्जन कर रहे थे, और जहां था जो है जब जब मौका था वो हरि का नाम लेते थे, हरी हरी कहते थे वो लोग, हरी 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 हरी, बड़ा आनंद आता था उनको मंदिर मार्जन में। जैसे कि गुंडीचा मंदिर माजर के दिन सब भक्त लोग मिलकर जब सफाई करते हैं, साथ में संकीर्तन चल रहा होता है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति करते हैं भक्त लोग। और वैसे कहा जाए किसी को, भैया थोड़ा यहाँ साफ कर दो, बोलते हैं सोचना पड़ेगा नहीं। तो देखिए हर सेवा में आनंद आ सकता है, भले ही बशर्ते हम लोग जो है उसको हृदय से करें, हृदय से जब करेंगे तो देखिए तब आनंद आएगा, तब देखिए ग्रंथों का वितरण इतना होगा आपके माध्यम से, आप निमित्त मात्र बन जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं आप पांच पांडवों के अतिरिक्त सबके सब मारे जाएंगे, हे अर्जुन केवल निमित्त मात्र बनो, क्योंकि आपकी तो विजय हो चुकी है, ग्रंथ तो बढ़ चुके हैं, अगर आप ग्रंथ बांट लोगे तो आपको श्रेय मिलेगा, नहीं आप बांटोगे तो कोई और बांटेगा, ग्रंथ तो बट नहीं है क्योंकि ग्रंथ बढ़ चुके हैं, श्रेय आपको नहीं चाहिए तो और किसी को मिल जाएगा, श्रेय का मतलब है कृष्ण की कृपा मिलेगी, आप भगवत प्रेम आपको प्राप्त होगा, ये श्रेय का मतलब ये होता है। इसलिए हम लोग इस सेना में है, याद रखिए हमारा मिशन है, इसलिए प्रभुपाल ने कहा कि एसेंस ऑफ आवर मिशन इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, द एसेंस ऑफ आवर मिशन इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहने का मतलब है कि मिशन क्या है, हमारा आंदोलन है ये। देखिए क्रिश्चियंस में एक बड़ी खूबी है, वो लोग क्या करते हैं, घर घर जाके फैमिली प्रीचिंग करते हैं, बाइबल का सर्मन पढ़ते हैं, हर घर में जाएंगे नॉक करेंगे और बाइबल का एक सर्मन पढ़ेंगे, और दूसरे घर में जाएंगे, फिर तीसरे घर में जाएंगे, वो लोग ज्यादा फैमिली प्रीचिंग में बहुत विश्वास करते हैं, एक एक फैमिली को लेके प्रीचिंग करते हो, कोई हाउस प्रोग्राम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रसाद का अरेंजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपके लिए आ रहे हैं, केवल आपके लिए आ रहे हैं, दो चार लोग घर में बैठे होंगे और उनको बाइबल से मैसेज देंगे, सर्मन देंगे, फिर दूसरे घर में जाएंगे, फिर तीसरे घर में जाएंगे, मिशनरी वर्कर्स। तो ये मिशनरी वर्कर्स जो होते हैं उनका मिशन क्या होता है कि पूरे शहर को, पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे संसार को हमें क्या करना है, क्रिश्चियनिटी में जोड़ना है, आप जाइए दक्षिण भारत में जाइए, केरल में जाइए, मिजोरम में जाइए, मणिपुर में जाइए, इन एरियाज में जाके देखिए क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैला जा रहा है, बहुत तेजी से, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। तो हम जो है कभी भी जो है कृष्ण भावना को अगर हम इसको मिशन के रूप में लेंगे तब हम लोग जागे, अगर हम सोचेंगे केवल हमें जाना है घंटी बजाना है और दर्शन करके ठाकुर जी के दान पात्र में कुछ 125 रुपए का दान देना है बस, तो वो हमारा मिशन नहीं है। वो हमारा मिशन नहीं। तो मिशन का मतलब यही है कि आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ जिम्मेदारी लेने इस आंदोलन के लिए। जैसे हमने कई बार बताया कि प्रभुपाल ने क्या बोला, यशोदा कृष्ण की माता क्यों है, क्योंकि उन्होंने चिंता को खरीद लिया है। चिंता बहुत करती थी माता यशोदा, दही का मंथन करते हुए क्या करती थी, वो सब गीत गाया करती थी कि कृष्ण को कौन मारने आए थे, पूतना मारने आई थी, तृणावत मारने आया था, शक्टासुर मारने आया था, इस सब का कृष्ण ने वध किया। बहुत चिंता कर रही है, पता नहीं और कौन सा असुर आए, कौन सा राक्षस आएगा, फिर कृष्ण को मारने के लिए पड़ी, चिंता करती रहती थी माता यशोदा। और दिन रात कृष्ण का नाम, कृष्ण के बारे में सोचना और कृष्ण का कीर्तन करना, ये करते करते कृष्ण की सेवा में रत रहती थी प्रेम के कारण। तो वही चिंता हम सबको खरीदनी है। इसलिए प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कहा, योर एंग्जाइटी दैट यू आर नॉट एबल टू चैंट विल नॉट, दैट विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड। योर एंग्जाइटी दैट यू आर नॉट एबल टू चैंट, आप समझ रहे हैं कि आपकी जो चिंता है कि आप जप नहीं कर पा रहे हो ठीक से, ये आपको धाम लेके जाएगा, आपका जप आपको धाम नहीं लेके जाएगा। कहने का मतलब उस चिंता में फिर क्या होगा, धीरे धीरे ध्यान से जप करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप चिंता ही कर रहे हो, जप कर ही नहीं रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप चिंता करते करते क्या होगा, धीरे 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 क्या करोगे, आप ध्यान से जप करना शुरू करोगे, क्योंकि आप चिंता कर रहे थे इस वजह से। तो इसलिए क्या, जब जिम्मेदारी हमारे सर पर होती है तो ऑटोमेटिकली क्या थॉट प्रोसेस हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ये लॉजिकल है। आपके सामने मान लीजिए एक ही कार्टन बड़ा है तो आप रिलैक्स करोगे, ये तो एक महीने में किसी एक व्यक्ति को दे आएंगे, 32 गीता है हमारे, बहुत कॉन्टैक्ट है, तो आप उस एक कार्टन के लिए जितना चिंता नहीं करेंगे। लेकिन आपके कमरे में कार्टन ही कार्टन भरे हो और पूरे कमरे में केवल इतनी जगह हो केवल आप सो सकते हैं और चारों तरफ कार्टन ही कार्टन नजर आए, कितनी भयानक स्थिति होगी वो सोच के देखिए आपके, कितना डर होगा आपके हृदय में। जैसे आप अगर बिजनेस अपना कर रहे हैं और आपका माल ही नहीं बिक रहा है और आपका गोडाउन पूरा सामान से भरा हुआ है, पूरा शॉप सामान से भरा हुआ है, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, तो चिंता का विषय है कि नहीं बताइए। तो वैसे ही चिंता का विषय हो जाता है, चारों तरफ किताबों को देख देख के दिमाग खराब हो जाता है, कैसे किताबें निकलेंगी, इतनी सारी बीबीटी वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, क्या होगा, कैसे ग्रंथ निकलेंगे। हाँ, लेकिन ये चिंता नहीं है। चिंता क्या होनी चाहिए कि क्यों नहीं हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, क्यों नहीं हम जा पा रहे हैं बाहर, क्यों नहीं हम ग्रंथों का वितरण करने के लिए निकल रहे हैं। अब बैठे बैठे चिंता करने से क्या होगा बताइए। उसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इन ग्रंथों के वितरण में प्लीज आप सब सहयोग दीजिएगा और पार्टिसिपेट करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि भाग लेना इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी। हमारा सबसे सिंपल सा स्ट्रैटेजी है क्या, जितने लोग हमसे जुड़े हुए इस आंदोलन में, कम से कम दिल्ली NCR में एक भी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, सबको ग्रंथ बांटने पड़ेंगे, कोई भी हो, पुजारी भी हो, ऑल्टर से। अभी देखिए हमारे पुजारी हैं, पुजारी नहीं एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, पुजारी बन गए इस महीने के लिए, वैसे तो ऑल्टर में पूरे साल नहीं जाते हैं वो, लेकिन इस साल वो चले गए और उन्होंने 10 तारीख को शुरू किया अगर नवंबर के, और अब तक वो ऑल्टर से 6000 गीता निकाल चुके हैं, अब विश्वास करें 6000 भगवद गीता, और मेरे पीछे पड़े प्रभु जी। एक्चुअली क्या है, वो के जो हेड पुजारी हैं, हेड पुजारी कहते हैं आप देखिए आरती के समय भी ग्रंथ बांटते रहते हैं, दिस इज वेरी वेरी ऑब्जेक्शनेबल, कि आप आरती चल रही है और तब भी ग्रंथ बांट रहे हैं। बोलते प्रभु जी क्या करो, जब आरती जो होती है ना उसी समय लोग बहुत निकट आके खड़े होते हैं ऑल्टर के, बहुत ध्यान से दर्शन करते हैं भगवान का, और उस समय ग्रंथ बहुत निकलते हैं। प्रभु 2500 गीता का लॉस हो जाएगा, प्रभु जी प्लीज आप महाराज से बात कर लीजिए, उनको बोल दीजिए। मैंने कहा ठीक है फिर महाराज से बात करता हूँ। तो आप वो चाहते हैं कि आरती जब हो रही है वो 12:30 की, और उसमें काफी लोग आते हैं टेम्पल में और ऑल्टर के बहुत नजदीक आके खड़े होते हैं, तो उस समय वो चाहते हैं कि वो ऑल्टर में बैठ के ग्रंथ भी बांटते रहे साथ साथ आरती के साथ साथ। देखता है टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठाकुर जी जो है इसको अपराध नहीं लेंगे, ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या है, कुछ लोग जो है इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो अगर गुरुदेव की आज्ञा होगी तो वो भी करेंगे, तो उसके लिए भी तैयार है। तो इस तरह से नए नए तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, पुराने तरीके कई बार ऑब्सोलीट हो जाते हैं। याद रखिएगा जापानीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, उसको RCI कहते हैं। RCI का मतलब होता है रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि हर क्षण हर पल हर समय हर परिस्थिति में वो क्या करते रहे, उसे सुधार करते रहे। जापान का एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, भले ही उसका सेल कम हो, उससे उनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जापान का एक उनका प्रिंसिपल है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसमें सुधार करते रहते हो, आप समझ रहे हैं कि इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, और जितना वो इंप्रूवमेंट करते जाते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसका डिमांड भी बढ़ता जाता है। चीटिंग वाला काम नहीं, चीटिंग वाला काम सबसे अधिक इंडिया में होता है, जापान में नहीं हो मिलेगा आपको चीटिंग। वो कहते हैं अगर आप उस क्वालिटी का चाहिए तो अलग से बना के दे देंगे, लेकिन जो ऑर्डर मिला है उसमें हम कोई चीटिंग नहीं करेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी में। तो कहने का मतलब है रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि सुधार करते रहना और नए नए तरीके ढूंढते रहना मार्केटिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के। ये प्रभुपाद ने सेम चीज बोले कि आप नए नए आउटलेट्स ढूंढिए, नए नए तरीके ढूंढिए कि कैसे कैसे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं पुस्तकों का वितरण। इन्फ्लुएंस को यूज करना है हमें, और इतना अधिक इन्फ्लुएंस को हम यूज करेंगे और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तो और सक्सेसफुल होंगे। यानी कहने का मतलब है मेहनत के साथ साथ, हमारे प्रयास के साथ साथ हमें अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए, और इस तरह से क्या होगा, ग्रंथों का वितरण हम लोग अधिक से अधिक कर पाएंगे प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। तो बहुत स्कोप है, आप कहीं भी जा सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जा सकते हैं और बस स्टैंड में खड़े होकर कर सकते हैं, और जो क्या कहते हैं मार्केट प्लेस में जा सकते हैं, जैसे क्राउड प्लेस है, करोल बाग, अजमल खान मार्केट है, गफार मार्केट है, या फिर पंजाबी बाग में जो एरिया होगा, मार्केट एरिया होगा, वहाँ जा सकते हैं। जहाँ जहाँ क्राउड है, जहाँ जहाँ भीड़ है, वहाँ जाइए। अब देखिए इंडिया में जो है जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, आप रशिया में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, 10 लोग अगर आपको मिल गए इस एरिया में गलती से, तो उसके अगले 100 किलोमीटर तक कोई परिंदा पर नहीं मारेगा, कोई नजर नहीं आएगा। किसको बांटोगे किताब, उत्साह होगा भी तो क्या करोगे, आपको है ही नहीं, किसको बांटोगे किताब। लेकिन यहाँ जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। उस दिन कह रहा था कि प्रभु जी इस तरह से लोग कहते हैं हमारे पास किताब है, हमारे ये आपने किताब में जो है प्राइसिंग नहीं की है, तरह तरह के लोग बहाने बनाते हैं। मैंने कहा उन सबको छोड़ दो, उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हमारे पास 10 लोग और खड़े हैं तैयार। वो एक ही तो व्यक्ति मना कर रहा है ना, 10 लोग और तैयार खड़े हैं, उसको जाने दो, प्रसाद देके उसको इन्वाइट करो मंदिर में, आओ ये प्रोग्राम में आइए, संडे फीस्ट होता है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ा आनंद आया, ये लीजिए थोड़ा महाप्रसाद लीजिए, चलिए आगे बढ़िए, और 10 लोग खड़े हैं आपके सामने। भारत में ग्राहकों की कमी नहीं है, दिल्ली शहर में 1.5 करोड़ की आबादी है, तो कोई अगर कहता है हाँ जी 2 करोड़ हो गया, अच्छा संख्या बढ़ रही है, देखिए ये तो और भी बढ़िया है, संख्या बढ़ती जा रही है, कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ भी पूछता रहे पूछने दो उसको, बोलो यार ठीक है जाओ यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हंसी खुशी उसको जो है उसको वहां से जाने दो, और उसके बाद आगे बढ़ो, और 10 लोग खड़े तैयार खड़े, अगले 10 कदम में आपको और 10 लोग मिलते हैं। ये है इंडिया, इंडिया की खूबी है, ये तो भारत के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद। भारत में जन्म लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ जनसंख्या की कमी नहीं है, इस कारण से भी ग्रंथों का वितरण अधिक से अधिक होता है। तो कंग्रेगेशन अपना वॉल्यूम बढ़ाते जाइए, अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाइए, अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण भावना के आंदोलन में जोड़िए, और सबको जोड़िए और किसी को मत छोड़िए, सबको लगाइए ग्रंथों के वितरण में, आप देखेंगे बस आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और टारगेट्स बढ़ाइए प्लीज, आप देखिए आप क्या है थोड़ा सा देखिए, हम बुरा मत मानेंगे, हम सब आलसी हो गए हैं, आप सोच रहे हैं 10 गीता कर लूंगा 20 गीता कर लूंगा पूरे महीने, ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा कैपेसिटी आपके अंदर, कैपेसिटी बहुत है। देखिए ब्रह्मा जी एक जीव सृष्टि के, ब्रह्मांड के एक जीव ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी, किसके, कृष्ण की कृपा से, और आप तो असंख्य जीव बैठे हैं यहाँ पर। और क्या बोलते हैं हमारे वैष्णव आचार्य ने भजन में लिखा, मैं याद नहीं आ रहा वो क्या लिखते हैं, कि एक एक गौड़िया वैष्णव में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। देखिए एक प्रभुपाद ने क्या चमत्कार किया, एक भारतीय ने क्या चमत्कार किया, पूरे विश्व को कृष्ण भावना भावित बना दिया। और प्रभुपाद ने कहा इफ आई गेट 100 डेडिकेटेड इंडियंस आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड इन 18 डेज, प्रभुपाद ने बोला। प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद ने कहा कि मुझे अगर 100 समर्पित भारतीय मिल जाए, मैं पूरे विश्व को, संसार को 18 दिन में बदल दूंगा। इतनी ताकत है आप में, सोच के देखिए, केवल डेडिकेशन चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, कृष्ण भावना भावित हो जाइए, ऐसा चमत्कार आप करेंगे जो किसी ने नहीं किया आज तक। आप समझते नहीं अपनी शक्ति को। देखिए हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा, हनुमान जी को बताना पड़ा था कि आप वायु पुत्र हो, 800 योजन आपके लिए कुछ भी नहीं है, 100 योजन आपके लिए कुछ भी नहीं है, एक ही झटके में आप उधर चले जाओगे, वापस भी आ जाओगे। जामा ने मना कर दिया, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं रही, जा तो सकता हूँ शायद वापस ना आ पाऊँ, तो बाकी लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा। इस तरह से हम आपको याद दिला रहे हैं, आप सबको याद दिला रहे हैं, आप किसके पोते हो, प्रभुपाद जी के पोते हो आप सब, कितनी शक्ति होगी आपके अंदर, सोच के देखिए आप। और भारतीय होने के नाते तो आपके पास संस्कार है, आपके पास कल्चर है। तो आप सब जाइए प्लीज, देखिए कमरे में बैठे बैठे रहने से क्या होता है, दीमक लग जाती है, दीमक टर्माइट्स लग जाएंगे आपके कॉन्शियसनेस में, सच बता रहा हूं। अगर आप बाहर जाएंगे तो खुश रहेंगे हमेशा, आपस में जितना मिल बैठ के बातें करते रहेंगे उतनी संभावना रहती है अपराध करने की। बोलते साधु निंदा से कैसे बचे, हमने कहा बाहर जाइए, वेरी सिंपल तरीका है। अरे साधु निंदा, जब साधु तो कोई है ही, बाहर निंदा कहां से होगी, वहां तो आपको मिलेंगे सांसारिक लोग मिलेंगे जिनको आप कन्विंस कर रहे होंगे, कृष्ण भावना के बारे में बता रहे होंगे, उनको आप ग्रंथ दे रहे होंगे, तो वहां साधु निंदा का कोई स्कोप ही नहीं है, वहां तो सड़क का धुआं खाना होगा, वही आपको शुद्ध करेगा आप सॉरी। या ऑक्सीजन अगर आपको मिल भी रहा है तो कॉन्शियसनेस तो पोल्यूट हो रहा है एक दूसरों की निंदा करके। तो साधु निंदा से बचना है, वैष्णव अपराध से बचना है तो संकीर्तन में जाइए, इससे बढ़िया तरीका कोई है नहीं संसार में। करके देखिए आप, हमारे आश्रम इंचार्ज बेचारे खाली घूम रहे, हमारे मंदिर में आश्रम इंचार्ज के पास कोई सेवा नहीं, मैंने कहा आप भी जाओ बाहर, आप क्या कर रहे हो, जब कोई है ही नहीं आश्रम में तो आश्रम इंचार्ज किस लिए है, आश्रम इंचार्ज की तो जरूरत पड़ती है तब जब आश्रम में भक्त होते हैं। तो आश्रम मैंने कहा कोई है ही नहीं, सब लोग सड़क पर चले गए, तो आप भी जाओ। तो हमारी समस्याएं कब आती है, हमारी समस्या जब आते हैं जब एक जगह बैठे होते हैं, एक जगह हम चर्चा करते हैं बहुत अधिक समय तक, इसलिए उतनी ही चर्चा करें जितना कि हम कृष्ण कथा कर सके और बाकी समय हम संकीर्तन में लग जाएं। हमारे गुरु महाराज ने इतने सारे मंदिर बना दिए, फर्स्ट पार्ट उन्होंने कर दिया अपना, अब सेकंड पार्ट आपको करना है। बहादुरगढ़ में बना दिया, बहादुरगढ़ में बहादुर लोगों की आवश्यकता है जो ग्रंथ बांटेंगे, नहीं पंजाबी बाग में पंजाबियों की आवश्यकता है, बंगाली मार्केट में बंगालियों की आवश्यकता है, और साउथ दिल्ली में साउथ इंडियंस की आवश्यकता है। तो जगह जगह पे हमें लोगों की आवश्यकता है जो कृष्ण भावना भावित बनेंगे और लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाएंगे। तो प्लीज आप कंजूसी मत करिए, मनुष्य जीवन आपको मिला, भी भारत भूमि में बड़े बड़े देवी देवता भी जो है तरसते हैं इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, संकीर्तन में भाग लेने के लिए, जानते हैं आप तरसते हैं वो लोग। कलयुग जो है बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन कलयुग जो हमारा कलयुग है वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। ऐसा कलयुग बार बार आए और आता रहे हर बार, ताकि हम संकीर्तन आंदोलन में भाग ले सके। सतयुग कभी ना आए, क्योंकि सतयुग में इस तरह का संकीर्तन नहीं होता है। यही है सतयुग, यही है गोल्डन एज, आप जानते हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी ने एक प्रश्न उठाया तत्व संदर्भ में, या पता नहीं किसी कौन से षट संदर्भ में ही आता है, उन्होंने प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि सतयुग में भी यह महामंत्र था। यहां यह जो श्लोक है ना, कृष्ण वर्णम दुशाकर्षम सांगो पांगा सपार्षदम, उसमें जीव गोस्वामी लिखा है कि सतयुग में भी यह महामंत्र था, लेकिन उस समय फिर ये इस महामंत्र की इतनी महिमा क्यों नहीं थी। पहली बात तो है कि सतयुग का ये जो है धर्म नहीं था, उस समय तो ध्यान योग था, कलयुग का ये युग धर्म है। दूसरी बात, हरिनाम तब भी था, तब भी हरिनाम में उतनी शक्ति थी, लेकिन जानते हैं सतयुग में एक समस्या थी, सतयुग में चैतन्य महापुरुष नहीं आए थे, सतयुग में चैतन्य महापुरुष नहीं आए थे, सतयुग में शिल प्रभुपाद जी नहीं आए थे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सतयुग का, और कलयुग बड़ा सौभाग्यशाली है। कलयुग में क्या है, चैतन्य महापुरुष भी आए हैं और प्रभुपाद जी भी आए हैं, हमको ये हरिनाम देने आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में हरिनाम का वितरण कर रहे हैं। इस वजह से क्या है, इस हरिनाम की इतनी महिमा है, स्पेशल हरिनाम जो कि हमें संकीर्तन आंदोलन में मिला है चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें मिला है, तो उसको लूट लो और संभाल लो। आप समझ रहे, तो आप सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे ग्रंथों का वितरण करने, उत्साहित होकर जाना। देखिए अगर चेहरे में 12 बजे होंगे तो कोई आपसे किताब नहीं लेगा, उत्साह बनाए रखना पड़ेगा आपको। उत्साह नहीं भी है तो उत्साहित होने का नाटक करिए, उत्साहित हो जाएंगे। प्रभुपाद ने ऐसी बोला, एक बार एक डिसाइपल आके बोला प्रभुपाद के, प्रभुपाद आई एम नॉट फीलिंग एंथुसियास्टिक टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, व्हाट शुड आई डू। प्रभुपाद ने जोर से टेबल पे हाथ मारा, प्रभुपाद ने कहा जस्ट बी एंथुसियास्टिक, उत्साहित बने रहो, उत्साहित नहीं भी हो तो उत्साहित होने का नाटक करो। जैसे कई बार क्या होता है, भक्त लोग नृत्य कर रहे होते हैं, एक पीछे खंभे में खड़ा, खंभे के पास खड़ा रहता है और नृत्य देख रहा है सब भक्तों का, वो डांस नहीं कर रहा है, वो कह रहा कोई उत्साह नहीं है मैं क्यों डांस करूं, लेकिन 2-3 भक्त उसको जबरदस्ती जब नृत्य करा लेने के लिए फोर्स करते हैं, उसके बाद वो ऐसा डांस करता है कि कोई भी नहीं कर सकता, होता नहीं होता, देखा होगा आपने। तो बेसिकली क्या है कि हमें केवल एक कदम आगे बढ़ाना है, अपने आप उत्साह आने लग जाएगा, एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा, इतनी एनर्जी आपको मिलेगी ठाकुर जी, इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आपका पूरा ब्लड जो है स्पिरिचुअल एनर्जी से जो है वो हो रहा होगा, क्या कहते हैं, एनर्जाइज हो रहा होगा। तो आप लोग प्लीज बाहर जाइए, अच्छा लग रहा है हमें कार्पेट पर बैठना, और बढ़िया लगता है श्रवण करना, और बहुत अच्छा लगता है उसके बाद गरम गरम प्रसाद लेना, ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे अच्छी बात क्या है कि हम बाहर जाए। ये महापुरुष चाहते हैं, ये प्रभुपाद चाहते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, जब वो देखा कि दो भक्त आपस में झगड़ा कर रहे हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला कि मेरी गलती है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कि मेरी गलती है कि आप सबको मैंने एक जगह इकट्ठा करके रखा। चैतन्य महापुरुष का आंदोलन जो है सड़क पे जाके भिक्षा मांगने के लिए है, संकीर्तन करने के लिए है, ये मेरी गलती है। आपको कहां लाभ मिलेगा? संकीर्तन मिलेगा। ये तो आपस में हम झगड़ा करेंगे, एक दूसरे का दोष देखेंगे, क्या अच्छा बताइए? एक दूसरे का दोष देखना या संकीर्तन में जाना, बताइए? तो क्यों नहीं करते हम लोग, क्यों नहीं करते बताइए? क्या उत्तर है इसका? किसके पास उत्तर है बताइए? क्यों नहीं करते बताओ करुणाचंद्र, क्यों नहीं करते? आज से नहीं, क्यों नहीं करते पूछ रहा हूं मैं, बताइए बताइए क्यों नहीं करते हम? क्या कर रहे बताइए? क्यों नहीं जाते हैं हम सब बाहर? समय की कमी है, कुछ कह रहे हैं ऑफिस है हमारा, कुछ कह रहे हैं हमारा घर में प्रॉब्लम चल रही है, ये है वो है, ठीक है वो सब बातें अच्छी बात है, लेकिन ये भी करना होगा। शर्म आती है, अरे शर्म को त्याग दो बस। देखिए ये आंदोलन है कृष्ण प्रेम में बेशरम होना। आप बाहर जाना शुरू करिए, आपकी सारी शर्म खत्म हो जाएगी। डरना नहीं हमें, मां शुचा भगवान गीता में कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, वह मत करिए। और अगर डर लग रहा है फिर भी पहली बार अगर जा रहे हैं तो ऐसे भक्तों के साथ जाइए जो उत्साहित है, करुणा चंद्र प्रभु के साथ जाइए, कितना उत्साह के अंदर, मुरली कृष्ण प्रभु के साथ जाइए, रुक्मणी कृष्ण है कमांडर इन चीफ, देखिए इन्होंने मिलिट्री का ड्रेस ही पहना आज, इन्होंने ग्रीन कलर का जैकेट पहना हुआ है, इज ए कमांडर इन चीफ, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। और क्या ऐसा बड़ा सबूत प्रमाण आपको चाहिए? कमांडर इन चीफ सेनापति आपके साथ में है, इनके साथ जाइए। और आप चाहें तो आप भी ये ड्रेस पहन सकते हैं इसी कलर का, स्पेशल ड्रेस बनवाया ग्रीन कलर का, सबके लिए जैकेट बनवाए, अच्छा वो रेड है, कोई नहीं वो भी खतरे का सिग्नल है। तो ऐसे ऐसे आप कॉन्शियसनेस जो भक्त हैं, ऐसे उत्साहित जो भक्त हैं, उनके साथ जाके देखिए, करके देखिए, अपने आप देखिए, ऐसे आप भागने लग जाएंगे। हमारे मधुसूदन प्रभु हैं, लंगड़ा हो, लूला हो, गूंगा हो, बहरा हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, मंद बुद्धि का हो, बस चलो यार हमारे साथ चलो बस। और जैसे मधुसूदन प्रभु के साथ जाने लगता है जोरदार, इनमें वो चौड़ा हो जाता है एकदम, ग्रंथ इतने ग्रंथ मारने लगता है, हैरान हो जाए। तो ये एक दूसरे को देख के हम लोग सीखते हैं। पंछियों के समाज में भी जो पंछी होते हैं ना बच्चे, उनको लेके और पंछी उड़ते हैं, और इस तरह से वो पंछी जो है फिर ट्रेंड हो जाते हैं उड़ने के लिए। तो इसी तरह से हमें करना है, साथ साथ जाइए और कुछ दिन के लिए सीखिए, आपको भी पता जाएगा क्या टेक्निक से, टेक्निक कोई नहीं है, उत्साह एक टेक्निक है, बाकी ठाकुर जी सारी बुद्धि हमें देंगे, इंटेलिजेंस सारा आपको मिलेगा ठाकुर जी, ऐसे ऐसे उत्तर निकलेंगे आपके मुख से आप हैरान हो जाओगे। नहीं, एक आपको एक कथा सुनाते हैं, घटना, एक बार की घटना है कि हमारे भक्तों ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, और एक घर के बाहर आए, और वहाँ पे एक पंजाबी व्यक्ति था, उसका लड़का था, लड़का छोटा था, और लड़का बार बार बोल रहा था मुझे ऊपर हाथी के ऊपर बैठना है, मेरा मुझे हाथी के ऊपर बैठना है, और रो रहा था। तो उसके बाप ने, उसके पिताजी ने जो है डांटा उसको, तेरा बाप आज तक नहीं बैठा हाथी पर, तू बैठेगा? तो बेचारे को बहुत डांट दिया लड़के को, और रोने लग गया वो, तो रोता रहा बेचारा वो। तो इतने में भक्त आए ग्रंथों को लेके, बोलते ग्रंथ ले लीजिए, ग्रंथ ले लीजिए, बोलते ग्रंथ पर नहीं लेना, मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। और ये लड़का बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो जब रो रहा था तो उसने जो है जिद कर ली कि मुझे हाथी के ऊपर बैठना है। तो कहा ठीक है यार, बताओ कितना कितना लगेगा हाथी के ऊपर बैठने का? वो हाथी वाला खड़ा था, तो 100 रुपये लगेंगे। तो 100 रुपये जो है, ये क्या हुआ, ये भक्त ने बोला कि अब ऐसा करिए, आप इस लड़के को बिठा दीजिए और ये इसको बैठे दीजिए, बेचारा रो रहा है, आपका लड़का बैठ रहा है, सो रो रहा है, और हाथी में बैठने के लिए सिर्फ 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये उस आदमी ने दिए, और इस भक्त ने जो है 100 रुपये लिए, उसको ग्रंथ पकड़ा दिया, और वो लड़का जो है हाथी के ऊपर बैठ गया। अब समझे मेरी बात को? हाथी वाला 100 रुपये नहीं मांग रहा था, हाथी वाला 100 रुपये नहीं मांग रहा था, वो भक्त ने कहा कि हाथी में बैठने के सिर्फ 100 रुपये लगेंगे बस। और इसके बाद जो है वो भक्त ने क्या किया, उस व्यक्ति को ग्रंथ दे दिया, और बच्चा हाथी में बैठकर बड़ा खुश हो गया, और उसके बाद नीचे उतरा, हाथी आगे निकल गया। तो ऐसे बात कई बार घटना होती है। देखिए आप ये मत सोचिएगा एक भक्त ने झूठ बोला, देखिए वो झूठ बोला है तो किसके लिए बोला है, अपने लिए तो नहीं बोला उसने। अगर डॉक्टर जो है आपकी फुंसी का ऑपरेशन करता है फोड़े का ऑपरेशन करता है तो आपको लाभ पहुंचा रहा है, आपको फायदा पहुंचा रहा है। भक्त दूसरों के उद्धार करने के लिए अगर एक शब्द झूठ भी बोल देते हैं उनका अपना कोई फायदा नहीं है। इन भक्तों को, इन ब्रह्मचारियों को एक चवन्नी नहीं मिलती है बाहर जाने के लिए, आप समझ रहे हैं, एक पैसा उनको नहीं मिलता है, एक पैसा कमीशन नहीं मिलता है। निस्वार्थ होकर केवल गुरु को खुश करने के लिए, प्रभुपाद को खुश करने के लिए इन ग्रंथों का वितरण करने जाते हैं, इतने कष्ट का, इतने तपस्या का, इतने खतरे का सामना करते हैं। कई लोग तो लोग जो पुलिस वाले पीछे पड़ जाते हैं, उठा के डाल देते हैं जीप में, चलो जी पुलिस स्टेशन चलो, कितने खतरे का इनको सामना करना पड़ता है, पीछे से गाड़ियां आती है, कभी भी कोई गाड़ी आके मार जाए। हमारे एक भक्त हैं केशव बलराम प्रभु, जो साउथ इंडिया में जब ग्रंथ बांट रहे थे पिछले साल की बात है, पीछे से एक मोटरसाइकिल ने आके मार दिया उनको। कितना रिस्क लेते हैं भक्त लोग, उनको क्या फायदा बताइए, फायदा केवल यह है कि उनको आनंद आता है बस उस चैंटिंग, उस ग्रंथ के वितरण में, उनको जो एक्सेसिव फील होती है, जो आनंद आता है वो पूरे ब्रह्मांड का सुख भी उनको मिल जाए तो वो आनंद नहीं मिलेगा, सच बताया आपको। और कोई उनका जो है स्वार्थ नहीं है, इसलिए कभी मत सोचेगा कि भक्त झूठ बोलते हैं, कभी नहीं सोचिए। तो भक्तों का एक ही स्वार्थ रहता है, इन ग्रंथों का वितरण करना और प्रभुपाद जी को खुश करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब कृपा करके जुड़िए, और जिन भक्तों ने ग्रंथ नहीं लिया है वो ग्रंथ लेके जाएं, और जो लेके जा चुके हैं और लेके जाएं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
हरी बोल, तो जोरदार करतल ध्वनि से पाऊ जी का धन्यवाद करेंगे। हरी हरी बोल। तो देख रहे हैं पाऊ जी को, हम पिछले लगभग मैं 25 सालों से देख रहा हूं, और हर साल दिन प्रतिदिन पाऊ जी का उत्साह बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह से उत्साह बढ़ाते भी जा रहे हैं। और आज इतना सुंदर श्लोक लिया पाऊ जी ने, हमें याद दिलाया कि हम भारतवासी हैं, मनुष्य हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या करना है, हमने जन्म सार्थक करना है, परोपकार करना है। तो प्रैक्टिकली क्या करना है आज से, कितने लोगों ने घर में गीता भर ली अपने, देखिए बहुत कम है, हमारा गोडाउन भरा हुआ है, हमें रात को नींद नहीं आ रही है। कृपया करके जा से गीता ले जाइए, सैटरडे संडे है, आप जा से गीता ले जाइए, अपने ग्रुप्स में बनाइए, अकेले जाइए, अपने कॉन्टैक्ट्स ढूंढिए, और ये इतना इतना ये आनंददायक ये विधि है, हमें धन्यवाद। जितना आप पुस्तक वितरण करने के लिए बाहर जाएंगे उतना प्रभुपाद की कृपा को आप साक्षात्कार कर पाएंगे, और आप जानेंगे हाँ प्रभुपाद कितनी कृपा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं। और वो भक्त बहुत दुर्भाग्यशाली होंगे जो इस सुंदर अवसर को खो रहे हैं केवल कुछ शर्म से, कुछ हिचक से। तो हिचक को छोड़िए, शर्म को छोड़िए, बाहर निकलिए और देखिए कैसे कृपा बरस रही है। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, अदरवाइज सब बातें बड़ी थियोरेटिकल रहेंगी। तो ये जो मैराथन है ये हमारे लिए बहुत सुंदर उत्सव है, इसको उत्सव के रूप में देखेंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे हर क्षण, लेकिन इसको देखेंगे ओहो फिर मैराथन आ गया, फिर हमें लेक्चर दिया जाएगा, फिर बाहर भेजा जाएगा, तो बहुत बड़ा बोझा लगेगा। बोझा है, लेकिन भक्त कहते हैं प्रभुपाद की शिष्य इट्स ए बर्डन ऑफ लव, तो प्रेम का बोझा है, इसको उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जन्म सार्थक होगा, हम दूसरों का भी परोपकार कर पाएंगे। तो एक बार फिर से हम धन्यवाद देंगे प्रभु जी का, हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके मोहन प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद भगवद गीता मैराथन की विदाई, गॉड प्रेम आनंदे।
एक मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा, ये बुक है हावर फैमिली बिजनेस, बहुत ही फैंटास्टिक बुक है, वैशेषिक प्रभु ने लिखा है, अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से और कि इसके प्रिंसिपल जो हैं और टेक्निक्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, और इस बुक को आप डेली आप पढ़ेंगे तो बहुत उत्साह बढ़ेगा आपका ग्रंथों के वितरण के लिए। इस बुक का नाम है और फैमिली बिजनेस।